प्राचीन बरही राजा का संवाद का प्रसंग था। राजा प्राचीन बरही ने बहुत से यज्ञादि किए थे, उन पर कृपा करने की दृष्टि से देवर्षि नारद उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि बहिष्मन, तुमने केवल जीवन में कर्म किया है, पर तुम्हें मैं बता देता हूं बहिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में तो प्रिय मालूम पड़ते हैं, परंतु जो यज्ञ आदि कर्म तुम कर रहे हो, जिनमें तुम्हें बलि देने की आवश्यकता पड़ी है, इन कर्मों का परमार्थ से किसी प्रकार का स्पर्श भी नहीं है। ये जो परमार्थवत दिखाई पड़ते हैं, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों में कर्मों का प्रतिपादन है, वे वास्तव में वेदों का मर्म नहीं जानते। इसका कारण यह है कि वे अपनी आत्मा से बहुत दूर चले गए हैं, वे श्री जनार्दन भगवान को समझ नहीं पाते जो सब में विराजमान है। जिन पशुओं की बलि देते आए हो बरहिष्मन, उनके भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। और देखो, यज्ञों में अनेक पशुओं का वध करने से तुम कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में कर्म या उपासना, इनमें से किसी के भी रहस्य का तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। स्तब्धो बृहद बधान मानी कर्म नावैषियत परम, तत्कर्म हरितोषम यत सा विद्या तन्मतिरिजया। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं देवर्षि नारद। विद्या वह है जिससे भगवान के चरणों में चित्त लगता हो, और कर्म वह है जिससे भगवान प्रसन्न होते हो। तुम्हारी इस बलि से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? पशुओं के भीतर भी तो वे ही प्रभु विद्यमान हैं। तुम बलवों करते हो, पशुओं का वध करते हो, अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम तो परमात्मा का ही वध कर रहे हो। फिर किस प्रकार इस घोर हिंसा रूप कर्म से तुम ईश्वर को प्रसन्न करने की आशा रखते हो? श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा हैं, वे नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। प्राचीन बलि ने जब यह सुना तो कहा कि भगवान, आपने कृपा करके मुझे उपदेश दिया, उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से मैंने विचार भी किया। आप सच कहते हैं, जिन आचार्यों ने मुझे कर्म का उपदेश दिया, मुझे लगता है कि वे अज्ञानी ही थे। ज्ञान का उनके जीवन के साथ कोई संस्पर्श नहीं हो पाया। अब आप यह जो उपदेश दे रहे हैं, उससे एक और यह जो कर्म के संबंध में मेरी धारणा थी वह दूर हो रही है, पर दूसरी ओर एक महान संशय भी खड़ा हो रहा है। अच्छा भगवान, वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को तो वह यहीं छोड़ करके चला जाता है, फिर परलोक में कर्मों से जो दूसरी देह बनती है उस दूसरी देह के सहारे अपने कर्मों के फल का उपभोग करता है। सिद्धांत कितना वैज्ञानिक सिद्ध हुआ है, हम इसकी चर्चा आपके समक्ष करने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में किस प्रकार का चिंतन किया है, उनके उस चिंतन को भी रखने की चेष्टा करेंगे। अब यह जो कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, यहां पर जिसका एक सूत्र हमें प्राप्त होता है, यह सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। हम यूं कह सकते हैं कि भारत की वसुंधरा में जितने धर्मों ने जन्म लिया है उन सभी ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है। बाहर के देशों में जो धर्म उपजे, पनपे और फैले, उनमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रश्रय नहीं दिया गया। वहां पर उन्होंने केवल एक ही जीवन को सब कुछ माना। तो जैसे हमने पिछली चर्चा में कहा था, यदि केवल मनुष्य के एक जीवन को ही स्वीकार किया जाए और यह न माना जाए कि उसके पीछे भी कुछ था, आगे भी कुछ हो सकेगा, तब तो कुछ बातें बनती नहीं है। यह जो जीवन की पहेलिका है, इस पहेलिका को समझाया नहीं जा सकता। और हमने एक सबसे बड़ी पहेलिका को आपके समक्ष रखा था, वह पहेलिका है मनुष्य मनुष्य में भेद। यह जो भेद दिखाई देता है, यह भेद किस कारण होता है? यदि हम कहें कि संसार में कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है, यह सब प्रकृति ही उत्पन्न करती है और प्रकृति जिस प्रकार चाहती है उत्पन्न करती है, इसमें एक दोष यह होता है कि फिर यदि संसार के पीछे कोई नियामक सत्ता ना हो, ऐसी कोई सत्ता ना हो जिसे हम ईश्वर कहकर के पुकारते हैं, और यदि प्रकृति ने अधाधुंध इस प्रकार संसार को उत्पन्न कर दिया, तो फिर कहना पड़ेगा संसार में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। परंतु यह भी बात तो दिखाई नहीं देती। यदि केवल हम प्रकृति को स्वीकार करें और ऐसा माने कि यह संसार यदृच्छा से उत्पन्न हुआ है, सब एक्सीडेंट से उत्पन्न हुआ है, दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है, तो मैं समझता हूं आज इस बात को कोई वैज्ञानिक स्वीकार नहीं कर सकेगा। जीवन में हम क्रम देखते हैं, नियम देखते हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता कि मात्र दुर्घटना से यह संसार उत्पन्न हो गया। हम ऐसा नहीं देखते कि बस इस संसार के उत्पन्न होने के पीछे किसी प्रकार का कार्य कारण नियम नहीं है, ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। जब हम देखते हैं, वैज्ञानिकों की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सचमुच यह मानते हो कि जीवन में किसी प्रकार का नियम नहीं है, क्या तुम यह मानते हो कि मनुष्य का जीवन उद्देश्य ही नहीं, तब तो वह एक बार सोचने लगता है। यह मानने के लिए वह तैयार नहीं होता कि मानव जीवन निरुद्देश्य है। क्या हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है? क्या प्रकृति ने जैसा हमें पैदा कर दिया हम उसी प्रकार पैदा हो गए? संसार में ऐसा कुछ नहीं है मनुष्य के सामने एक लक्ष्य के रूप में जिसे वह पाना चाहता हो। क्या सचमुच इतना यह मनुष्य जन्म इस प्रकार निरुद्देश्य लक्ष्यहीन है? आज का वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। 50 वर्ष पहले भले वैज्ञानिक यह मान सकता रहा हो कि जीवन के पीछे किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं, निर्देश है, यह तो प्रकृति सर्जन कर रही है, सृष्टि करती है, और उसकी सृष्टि में किसी उद्देश्य को देखना अनुचित है, किसी प्रकार उचित नहीं है। भले यह 50 वर्ष पहले की बात ठीक रही हो, पर आज का वैज्ञानिक इन सब बातों को स्वीकार नहीं करता। जैसा हमने कहा था, डार्विन हो गए हैं बहुत बड़े जीव शास्त्री। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जीव शास्त्र को जन्म देने वाले वे पिता हैं, और उन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास किया है। यह जीवन क्या है, यह जो जीवन है क्या बस वह इसी प्रकार एक निरुद्देश्यपूर्ण प्रवाह है, या इसके पीछे किसी प्रकार का उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। डार्विन भले ही किसी लक्ष्य को नहीं पा सके थे, पर आज जो डार्विन के अनुयायी हैं वे जीवन को लक्ष्य ही नहीं मानते, वे कोई उद्देश्य देखते हैं। उस उद्देश्य की भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली बार यह कहा था कि केवल इसी जीवन को मानने में सबसे बड़ा दोष यह है कि हम मनुष्य मनुष्य के पार्थक्य को समझा नहीं पाते हैं। जैसे एक ही पिता और माता से दो जुड़वा भाई पैदा होते हैं, मनुष्य मनुष्य का अंतर तो समझ में आता है, पर एक ही घर में एक ही पिता से एक ही माता के गर्भ में दो जुड़वा लड़के पल रहे हैं, पैदा होते हैं, एक ही समय में पैदा होते हैं, पर दोनों में अत्यंत भिन्नता देखी जाती है, प्रकृति की भिन्नता। धीरे धीरे वे बड़े होते हैं, ऐसा देखा गया है कि एक क्षत्रिय बनता है, दूसरा गरीब रहता है, दूसरा व्यक्ति जीवन में सामान्य तौर पर सफल होता नहीं दिखाई देता, एक भाई सफल होता दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, क्या यह भी कोई दुर्घटना है, यह जो अनमेल है, भेद है इन दोनों में, यह भेद किसने बनाया? यदि हम कहें कि प्रकृति ने यह भेद बनाया है, तब तो यह कोई उत्तर नहीं होता है। यदि प्रकृति ने भेद बनाया है ऐसा कहकर के हम रुक गए, तब तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि प्रकृति जड़ है या चैतन्यवान है, कि प्रकृति में सचमुच क्या किसी प्रकार की जड़ता है या प्रकृति चैतन्यमयी है। जब हम कह देते हैं कि प्रकृति निरुद्देश्य है और वह दुर्घटना के सहारे इस संसार को जन्म देती है, तो क्या इस तथ्य में किसी प्रकार से हमें विश्वास करने का मन होता है? नहीं हो पाता। ऐसा नहीं लगता कि यह जो प्रकृति विपुल उत्पादन कर रही है वह केवल एक दुर्घटना के वश, एक संयोग के वश कर रही हो, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। प्राचीन काल में यदृच्छावादी लोग थे। यदृच्छा का मतलब कृत्रिमता, एक्सीडेंटलिज्म। वे कहा करते थे यह संसार आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे तुम किसी नियम कानून को मत देखो। ऐसे लोग प्राचीन काल में भी थे और उनको हमने यदृच्छावादी कहकर के पुकारा है। उनका सिद्धांत था यदृच्छावाद। यदृच्छा का मतलब जैसी इच्छा हो गई वैसा हमने उत्पन्न कर दिया, मानो जैसी इच्छा हो गई वैसा संसार का सर्जन हो गया। इस प्रकार की बात उस समय के कुछ लोग माना करते थे। उनका यह सिद्धांत था कि यह जो मनुष्य का जन्म होता है वह दुर्घटना से होता है, मैं पैदा हुआ हूं, मेरे पीछे दुर्घटना ही कारण है, मैं बड़ा होता हूं तो एक्सीडेंट से बड़ा होता हूं, शादी ब्याह मेरा होता है तो वह भी एक्सीडेंट से होता है, मेरे बच्चे भी एक्सीडेंट से होते हैं, और एक दिन मैं एक्सीडेंट से मर भी जाता हूं। जीवन में किसी प्रकार का नियम नहीं देख पाते ऐसे लोग, तो क्या आज का वैज्ञानिक इस प्रकार एक्सीडेंट को ही कारण देखता है? नहीं देखता। आज जब वह देखता है अंतरिक्ष प्रकृति के भीतर में निहित जो शक्तियां हैं, जो कार्य कर रही हैं, जब देखता है कि ये शक्तियां कितनी अपरिवर्तनशील हैं, तब तो वह सचमुच विचार करने लगता है कि यहां एक्सीडेंट नहीं है, यहां पर नियम है, यहां पर क्रम है। हम एक्सीडेंट कह देते हैं कब, जब हम किसी को नियम को नहीं जानते, तब जब हम किसी क्रम को नहीं जान पाते तो हमें वह एक्सीडेंट दिखाई देता है। परंतु जो नियमों का जानकार है वह उसके पीछे निहित छिपे हुए किसी क्रम को देख ही लेता है तो वैज्ञानिक के लिए कोई भी घटना एक्सीडेंट नहीं होती। आज वैज्ञानिक इतना ही कहता है, मैं इस घटना के पीछे छिपे हुए नियम को नहीं जान पा रहा हूं, इसलिए इसे एक्सीडेंट कहता हूं। वस्तुतः इसके पीछे भी कोई नियम है और उस नियम को जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाता है, चंद्रमा पर जाकर के उतर जाता है और हम यह देखते हैं कि उसकी गणना कितनी सही होती है। आपने देखा होगा जिस तरह की चंद्रमा के धरातल पर उतरा, उसके पहले गणित के द्वारा समझा दिया गया था इतने दिन इतने घंटे और इतने मिनट लगेंगे। जिस समय यहां से वह प्रक्षिप्त हुआ भूमि से यहां और जब वह चंद्रमा में पहुंचेगा इतना समय लगेगा, और हम लोगों ने अत्यंत आश्चर्य से देखा था कि उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं हुआ, उतना ही ठीक समय लगा, उतने ही घंटे उतने ही मिनट ठीक लगे और यान चंद्रमा में पहुंच गया। इसका क्या मतलब? मतलब यह है, यदि प्रकृति के नियमों में परिवर्तन होता रहता यह गणना कभी संभव नहीं थी। यह गणना संभव है इसलिए संभव है कि प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं है। केवल बात यह है कि यदि हम जान लेते हैं तब तो नियमों को जान करके हम उस पर हावी हो जाते हैं। यह जीवन का सिद्धांत है, यदि हम किसी नियम को नहीं जानते तो नियम हमें चलाता है, यदि हम नियम को जानते हैं तो फिर हम नियम को चलाते हैं। एक मशीन है, मैं मशीन के नियम को नहीं जानता, मशीन मुझे चलाती है, जब वह बंद हो जाना चाहे बंद हो जाती है, मैं उस मशीन का कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं उस मशीन के नियम को नहीं जानता। परंतु यदि मैं मशीन के नियम को जान लूं तो फिर मैं मशीन को चलाने लगता हूं। मशीन कहेगी कि मैं बंद होऊंगी, मैं कहूंगा कि तुम बंद हो जाओ भले, पर मैं जानता हूं तुम्हें चलाना, मैं जानता हूं और इसलिए तुम बंद नहीं रह सकोगी, मैं तुम्हें फिर से चालू कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी नियम को जानते हैं हम उस नियम पर हावी हो जाते हैं, उसे चलाने लगते हैं, और जब हम नियम को नहीं जानते तो नियम हमें चलाता है। तो ठीक यहां पर वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि अद्भुत है यह सारा नियम, यह संसार, यह सृष्टि नियमों से भरी है, केवल यही है कि हम उन नियमों को नहीं जानते, इसलिए अज्ञ है, इसलिए दुर्घटना कह देते हैं। तो यह जो वैज्ञानिकों की बात रही वह हमारे एक जिसे कहेंगे पोषण के लिए, हमारे मत को पुष्ट करने के लिए एक सिद्धांत हमारे समक्ष आता है। तो यह जो कर्मवाद है और पुनर्जन्म का सिद्धांत है वह किस प्रकार पोषित होता है? हमने कहा यदि हम केवल एक ही जन्म को स्वीकार करें, न आगे स्वीकार करें न पीछे, तब तो जीवन की समस्याएं सुलझ नहीं पाती, मनुष्य मनुष्य का भेद अनुत्तरित रह जाता है। केवल इतना ही कहेंगे कि प्रकृति ने यह जो विविधता है उत्पन्न की, परंतु उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता कि कैसे कोई एक बहुत बड़े अमीर के घर पैदा होता है और दूसरा एक बहुत गरीब के यहां पैदा होता है। एक व्यक्ति है जिसने सपने में भी दुख नहीं देखा, दूसरा व्यक्ति है जिसने सपने में भी सुख का अनुभव नहीं किया, यह फिर भेद किस लिए है? यदि प्रकृति यह भेद करती है तब लानत है ऐसी प्रकृति को जो इस प्रकार का भेद उत्पन्न करती है या मनुष्यों को इस प्रकार के भेद के चक्कर में बांधती है। तो फिर इस प्रकृति के विरुद्ध में सारा संसार संग्राम में खड़ा हो जाए तो हम यह कहेंगे कि केवल प्रकृति पर यह आरोपित कर देना कि प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार के भेद उत्पन्न करती है कोई सार्थक बात नहीं मालूम करती। और यदि हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं और ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने ही संसार की रचना की है, ईश्वर ने ही भिन्न भिन्न लोगों को बनाया है, ईश्वर ही अलग अलग प्रकार के मनुष्यों को रचता है, तब हमें ईश्वर की दयालुता पर संदेह होता है। ऐसा ईश्वर किस काम का जो किसी को धनी बना दे और किसी को निर्धन बना दे, जैसे दूसरे धर्म में ऐसा ही माना है, ईश्वर की इच्छा हुई उसने संसार को बना दिया और परम कारुणिक है, परम दयालु है, वह ईश्वर दयालु कैसे हो सकता है कि जो संसार को इस प्रकार भिन्नता से युक्त करके बनाए कि एक ही जीवन मिला है, ईश्वर ने इच्छा की जा तो गरीब बन जा, तू हरदम कीचड़ में लिपटा रहा, ईश्वर ने इच्छा की और दूसरी ओर कहा जा तो धनवान बन, तो जीवन में कभी भी दुख का दर्शन न करे, यह ईश्वर हमारे किस काम का जो इस प्रकार का पक्षपात करता है, किसी को मानो वहां पर सोने में रखता है, सोने के सिंहासन पर बिठाता है, और दूसरा व्यक्ति है जिसको 2 जून का भोजन भी मैसर नहीं होता, लानत है ऐसे ईश्वर को। हम ईश्वर को लेकर के क्या करेंगे जो इस प्रकार गरीब धनी का भेद किया करता है, यदि ईश्वर इसका कारण है, यह प्रश्न उठता है। और यह प्रश्न हमने उठाया अत्यंत प्राचीन काल में, हमारे यहां भी लोग थे जिन्होंने यह मतलब बस यही एक जीवन पर्याप्त है, कहां पर्याप्त है, दूसरों ने चिंतन किया, विचार किया, चुनौती दी, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो एक जीवन पर्याप्त है, कहां पर्याप्त है, यह एक जीवन पर्याप्त नहीं है, यह जो जीवन की विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को समझाने के लिए जीवन बिल्कुल अपर्याप्त है, इस एक जीवन से कुछ सुलझता नहीं है। और ठीक यही बात दूसरे धर्मों में हम देखते हैं, चाहे हम ईसाई धर्म लें चाहे हम इस्लाम धर्म लें, उन्होंने केवल इसी जीवन को सब कुछ माना है, वे नहीं कर पाते, कारण नहीं दे पाते कि मनुष्य मनुष्य में भेद इतना बड़ा क्यों है, वे कहते तो हैं कि ईश्वर परम कारुणिक है, प्रश्न यह है कि ईश्वर इतना कारुणिक है तो इतने भेद क्यों उत्पन्न करता है, भेद भिन्न भिन्न प्रकार के ये जो भेद देखते हैं मनुष्य मनुष्य में अंतर देखते हैं, वह अंतर वह क्यों उत्पन्न करता है, केवल कहने से तो नहीं होता कि कह दें वह ईश्वर की लीला है, ईश्वर की इच्छा है, ऐसा कह देने से किसी समस्या का स्पष्टीकरण नहीं होता, समाधान नहीं होता। तो यहां पर हिंदुओं ने बहुत विचार किया कि क्या कारण है, क्या सचमुच ईश्वर ही इस प्रकार के भेदों को रचित करता है, भेदों को सृष्ट करता है। उन्होंने तब देखा कि अरे नहीं, ईश्वर नहीं करता, यह व्यक्ति स्वयं करता है, यह व्यक्ति के कर्म ही उसके उत्तरदायी होते हैं, मनुष्य का इतना ही एक जीवन पर्याप्त तो नहीं है कि मनुष्य की सारी कहानी इस एक जीवन में पूरी नहीं हो जाती, बहुत एक लंबी कहानी है, कई जीवनों से होती चली आई यह कहानी है। और इस प्रकार यहां पर विचार किया गया कि नहीं, यह जो एक जन्म है उससे किसी प्रकार का समाधान नहीं हो सकता, हमें कई जन्मों को मानना पड़ेगा, जीवन की परंपराओं को, जीवन की परंपरा को, जीवन के क्रमों को स्वीकार करना पड़ेगा। और उन्होंने हमारे समक्ष यह पुनर्जन्म का सिद्धांत रखा। अब सिद्धांत रखा, पहले तो मनुष्य अनुमान करता है, सिद्धांत तो कैसे बनाता है, वह अनुमान करता है, विश्लेषण करता है, जीवन की घटनाओं को देखता है और घटनाओं को देख करके विश्लेषण के बल पर वह कुछ अनुमान करता है, कुछ सिद्धांत तो स्थिर करता है। और फिर उसके बाद सिद्धांत तो स्थिर करके चुप नहीं बैठ जाता, केवल सिद्धांत तो स्थिर करके सिद्धांतों की घोषणा करें तो हम चुनौती दे सकते हैं, तुम्हारे सिद्धांतों का आधार क्या है, तुम किस बल पर ऐसा कह रहे हो, क्या तुम्हारे सिद्धांतों के पीछे किसी प्रकार के प्रयोग का मानो वहां पर आधार है, तुमने क्या कोई प्रयोग किया है, किसी निकष पर तुमने कसा है। और तब यह जब हम कहते हैं तो जब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आते हैं तो हमें लगता है कि हां उन्होंने इसे निकष पर कसा है, प्रयोग के निकष पर कसा है, परीक्षण की कसौटी पर कसा है। और परीक्षण की कसौटी पर कसने से यह जो सिद्धांत है पुनर्जन्म का यह खरा उतरा है। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा, कई घटनाएं ऐसी देखी जहां व्यक्ति पुनर्जन्म की बात कहता है तो वह भी उनके समक्ष आता है कि यह भी तो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से तो हम अनुमान कर सकते हैं। और फिर जो योगी थे उन्होंने योग के द्वारा, एक ऐसी विद्या के द्वारा जो विद्या हमें बाहर जगत में प्राप्त नहीं होती, इंद्रियों के क्षेत्र में प्राप्त नहीं होती, ऐसी योग विद्या के द्वारा उन्होंने अपने पुराने जन्मों को भी देख लिया, यह भी बात हमें मालूम पड़ती है। तो तात्पर्य यह हुआ, यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वह कपोल कल्पना नहीं है, वह कल्पित नहीं है, बल्कि आजकल जो लोग इस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे ऐसे लोग भी धीरे धीरे इस सिद्धांत की ओर आ रहे हैं। एक विज्ञान में पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, पैरासाइकोलॉजी कहते हैं मनोविज्ञान का एक अंग, परामनोविज्ञान, परामनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं बातों को लेकर के गवेषणा की जा रही है कि यह जो मनुष्य का जीवन है, यह मनुष्य का जीवन क्या इतना सही है जो एक जीवन हमें दिखाई देता है, अथवा इसके पीछे भी कुछ था और आगे भी कुछ होगा। इस संबंध में परामनोविज्ञान चिंतन कर रहा है। उसने बहुत सी घटनाएं देखी हैं, ऐसी घटनाएं जहां पर ऐसा मालूम पड़ा है कि किसी छोटे से बच्चे ने अपने पूर्व जन्म के संबंध में बताया है। ऐसी घटनाओं के संबंध में आप और हम भी पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं पर एक छोटा सा बच्चा है, उसने अपने पिछले जन्म की बात बता दी तो फिर लोग उसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, खोजते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और तब उन्हें मालूम पड़ता है कि हाँ, यह तो बच्चा ठीक ही कह रहा है। यह बच्चा है अभी रायपुर में और उसने जो बताया वह कहीं कानपुर की घटना है। अब यह छोटा सा बच्चा जो 5 साल का है कभी कानपुर नहीं गया, कानपुर के रास्ते उसने कभी नहीं देखे और वह रायपुर का बच्चा कहने लगता है कि मेरे तो वहां पर पूरा परिवार है कानपुर में और वहां पर देखो ऐसा ऐसा हमारा मकान है। और वह अपने मानो पिछले जन्म की बहुत सी बातों को बता देता है और जब खोज पड़ताल की जाती है सारी बातें उसकी सच निकलती हैं। अब यह कैसे संभव हुआ? ऐसी घटनाएं कई आपको मिलेंगी। तो ये जो घटनाएं प्राप्त होती हैं फिर इसका आधार क्या है? जब विज्ञान के समक्ष इसको रखा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं जी, ठीक है हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं, केवल इस घटना से तुम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दे दो। यह कैसी बात है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो हम पूछते हैं तुम क्या कहोगे, ऐसी घटनाओं को किस श्रेणी में लाओगे? तो विज्ञान कहता है ऐसी घटनाओं के संबंध में हम तो यही कहेंगे कि उनको ईएसपी होता है। ईएसपी का मतलब है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है स्नायविक, परसेप्शन माने देखना। तो जो स्नायविक, जो स्नायु के सहारे न देखा गया हो ऐसा एक दर्शन उनको होता है, अस्नायविक दर्शन होता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक तो तार होता है और एक बेतार का तार होता है कि एक तार है, हम तार के सहारे अपना समाचार भेजते हैं, अपनी खबर भेजते हैं, और दूसरा आप समझते हैं वायरलेस, वह बेतार का तार, उसके सहारे हम भेजा करते हैं। तो ठीक, इन वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हम अपने स्नायुओं से ग्रहण करते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हमें होता है। तो यह तो स्नायविक दर्शन है। एक अस्नायविक दर्शन होता है, वह क्या होता है, वहां पर स्नायुओं की आवश्यकता नहीं होती और दर्शन हो जाता है। तो उस बच्चे ने इसी प्रकार का कोई अस्नायविक दर्शन किया होगा। अब उनकी इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो हम कहते हैं कि अस्नायविक दर्शन कैसे होता है, तो फिर वे कहते हैं कि जैसे तार और बेतार का तार, ये दोनों हम देखते हैं, तो ठीक इसी प्रकार कुछ बहुत से दर्शन हैं जो स्नायु के सहारे होते हैं, कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जिनके लिए हमें स्नायु की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको हम अस्नायविक दर्शन कहते हैं। अब हमने पूछा कि ठीक है, आपने कहा कि यह एक छोटा सा बच्चा रायपुर का है, उसने एक अस्नायविक दर्शन किया कि पिछले जन्म में वह कानपुर में था, उसके पिता ऐसे ऐसे थे, वह कहता है कि उसकी पत्नी अभी तक जीवित है, बता रहा है कि उसके तो बड़े बड़े बेटे हैं, अब उसने एक अस्नायविक दर्शन कर लिया। अब हम कहते हैं कि केवल इसी लड़के ने अस्नायविक दर्शन क्यों किया और किसी दूसरे लड़के ने इसी प्रकार का अस्नायविक दर्शन क्यों नहीं किया? एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इतने लाख लाख करोड़ करोड़ छोटे बच्चे हैं भारत में और भारत से बाहर, तो यह जो छोटा बच्चा है रायपुर का, यही एक बच्चा वह अस्नायविक दर्शन कैसे करता है? एक, और दूसरी बात कि यदि अस्नायविक दर्शन के सहारे पिछली घटनाओं को इस प्रकार कोई छोटा लड़का देख सकता है तो केवल यही एक लड़का क्यों देखता है? भारत में तो और भी कई स्थान होंगे जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कोई दूसरा बच्चा इस प्रकार का दर्शन क्यों नहीं करता? कभी हमें ऐसे समाचार नहीं मिले कि दो छोटे बच्चों ने एक ही प्रकार की घटना का वर्णन किया हो